एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार
नमस्कार
नमस्कार।
आज हम अमेरिकी राजनीति की कह सकते हैं गहराइयों में उतरने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं एल सैंडी मेजल की किताब अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शंस पर। ये किताब ना उस पहेली को सुलझाने में मदद करती है जो शायद कई लोगों के मन में आती होगी।
कौन सी पहेली?
यही कि भाई अमेरिकी राजनीति में ये पॉलिटिकल पार्टियां इतनी जरूरी क्यों हैं, खासकर तब जब इतने सारे लोग उन पर मतलब भरोसा ही नहीं करते।
हाँ, और ये सवाल तो आज के माहौल में मुझे लगता है और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
सही बात है।
पूरी दुनिया में ही लोकतंत्र, राजनीतिक दल, उनकी भूमिका, इन सब पर एक बहस सी छिड़ी हुई है। और अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है, वो तो एक तरह से केस स्टडी जैसा है।
हाँ बिल्कुल।
तो ये किताब हमें यही समझाती है कि ये अमेरिकी पार्टियां और उनका चुनावी सिस्टम, वो असल में काम कैसे करते हैं और क्यों, मतलब इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी वो लोकतंत्र के लिए जरूरी बने हुए हैं।
अच्छा
तो आज हम इसी किताब के जो जरूरी विचार हैं उनको थोड़ा खंगालेंगे, है ना?
बिल्कुल। तो सबसे पहले लेखक की बात कर लेते हैं, एल सैंडी मेजल।
हाँ जरूर।
ये कोई मतलब सिर्फ किताबी प्रोफेसर नहीं है, वो कोलबी कॉलेज में सरकार के प्रोफेसर इमेरिटस हैं, ये तो है,
जी।
और दशकों से अमेरिकी राजनीति पर लिख रहे हैं, पार्टियां, चुनाव, पैसा, कांग्रेस, सब कुछ। उनकी किताबें तो अक्सर यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई भी जाती हैं।
हाँ वो तो है, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो शायद उनका जमीनी अनुभव है।
अच्छा, कैसा अनुभव?
मतलब वो सिर्फ विश्लेषण नहीं करते। 1978 में उन्होंने खुद मेन राज्य से अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ा था।
अरे वाह, तो वो खुद मैदान में उतर चुके हैं।
हाँ, तो उनके विश्लेषण में आपको एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की पैनी मजर तो मिलेगी ही, साथ में उस इंसान का अनुभव भी मिलेगा जिसने खुद राजनीति के दांव पेच, वो दबाव, वो सब झेला है।
तो एक तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का संगम है।
बिल्कुल, ये दोहरा नजरिया ही उनकी बातों को ज्यादा वजनदार बनाता है। वो सिस्टम को सिर्फ बाहर से नहीं देख रहे, वो उसे अंदर से जी चुके हैं।
सही कहा। अब आते हैं किताब पर। ये किताब है क्या असल में?
देखिए, अमेरिकी लोकतंत्र की जो मशीनरी है ना,
हाँ
उसको समझने के लिए एक तरह की गाइड है।
अच्छा
इसका मकसद किसी पार्टी का पक्ष लेना या उसका विरोध करना नहीं है।
अच्छा तो ऑब्जेक्टिव है।
हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये बताती है कि ये पार्टी सिस्टम काम कैसे करता है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी बनावट कैसी है और आज इसके सामने क्या चैलेंज है।
और किताब का मुख्य तर्क क्या है, मतलब सबसे बड़ी बात जो लेखक कहना चाह रहे हैं?
सबसे बड़ा तर्क, या कह लीजिए सेंट्रल आइडिया, ये है कि भाई अमेरिकी जनता पार्टियों पर चाहे जितना शक करे।
हाँ, जो कि करती है।
हाँ, और आजकल उम्मीदवार अपनी छवि पर, अपने व्यक्तित्व पर ज्यादा जोर देते हैं।
बिल्कुल, कैंडिडेट सेंट्रिक हो गया सब।
हाँ, कैंडिडेट सेंट्रिक। लेकिन इन सबके बावजूद राजनीतिक दल अमेरिकी लोकतंत्र के लिए अब भी मतलब अनिवार्य हैं, केंद्रीय शक्ति हैं।
अच्छा, अनिवार्य मतलब उनके बिना काम नहीं चल सकता।
मेजल का यही तर्क है। वो सिर्फ नाम या कोई पुरानी संस्थाएं नहीं है, वो लगातार बदलते रहते हैं, माहौल के हिसाब से ढलते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
और वो ऐसे काम करते हैं जो शायद कोई और कर ही नहीं सकता, है ना?
एग्जैक्टली। सोचिए जरा, वोटरों को विकल्प कौन देता है, लोगों को राजनीतिक रूप से जोड़ता कौन है, नेताओं को तैयार करना, नीतियां बनाना, सरकार चलाने में मदद करना।
ये सब पार्टियों की ही काम है।
हाँ, मेजल इसी बात पर जोर देते हैं कि ये काम लोकतंत्र के लिए कितने बुनियादी हैं, कितने फंडामेंटल हैं।
तो किताब किन किन एरियाज को कवर करती है?
मोटी तौर पर देखें तो ये अमेरिकी पार्टी सिस्टम के इतिहास से शुरू होती है,
ठीक है।
फिर आज की पार्टियों की बनावट पर आती है, उनका संगठन कैसा है, वोटर कौन है उनके, सरकार में उनकी क्या भूमिका है, फिर चुनाव की प्रक्रिया, उम्मीदवार कैसे चुने जाते हैं, मतलब वो प्राइमरीज और कॉकस वगैरह।
हाँ, वो काफी पेचीदा लगता है।
है तो फिर चुनाव प्रचार कैसे होता है, मीडिया का रोल, पैसे का रोल, खासकर वो सिटीजन यूनाइटेड वाला मामला।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है।
और आखिर में आज के जो बड़े मुद्दे हैं जैसे ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, छोटी पार्टियों की जगह, उन सब पर बात करती है।
चलिए, तो कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि पार्टियां जरूरी क्यों हैं, खासकर जब अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे,
हाँ
जिन्होंने देश बनाया, वो तो पार्टियों के सख्त खिलाफ थे।
हाँ ये बड़ा मजेदार विरोधाभास है। उन्हें लगता था कि पार्टियां देश को बांट देंगी, गुटबाजी होगी।
तो फिर पार्टियां आईं कैसे?
जरूरत महसूस हुई। मेजल बताते हैं कि लोकतंत्र को चलाने के लिए, इतने बड़े और विविध देश को चलाने के लिए पार्टियों की जरूरत पड़ी।
अच्छा,
वो अलग अलग विचारों और हितों को मतलब एक मंच पर लाती हैं, वोटरों के लिए चुनाव को आसान बनाती हैं, भाई किसको वोट दें ये समझने में मदद करती हैं। यहीं पर वो जिम्मेदार पार्टी मॉडल का जिक्र आता है।
हाँ, ये क्या है?
ये एक आदर्श सोच है, एक आइडियल है कि पार्टियां चुनाव से पहले साफ साफ बताएं कि वो क्या करना चाहती हैं, उनके प्रोग्राम क्या हैं,
ठीक है,
और अगर वो जीतती हैं तो उन्हें वो वादे पूरे करने चाहिए ताकि अगली बार वोटर उन्हें उसी आधार पर परख सकें कि उन्होंने कहा था किया या नहीं।
पर असलियत में ऐसा होता है क्या हमेशा?
होता तो नहीं है, ये एक आदर्श है जिसकी तरफ बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, पर असल राजनीति ज्यादा जटिल होती है।
और किताब अमेरिकी पार्टी सिस्टम के इतिहास के बारे में क्या कहती है? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई स्थिर चीज नहीं रही है, समय समय पर बड़े बदलाव आए हैं।
बदलाव? कैसे बदलाव?
जिन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट पुनर्संरेखण कहते हैं।
पुनर्संरेखण मतलब?
मतलब जब देश में कोई बड़ा संकट आता है या कोई बड़ा सामाजिक मुद्दा उठता है, जैसे मान लीजिए 1930 की महामंदी,
हाँ, ग्रेट डिप्रेशन,
या फिर 1960 का नागरिक अधिकार आंदोलन,
सिविल राइट्स मूवमेंट,
हाँ, तो ऐसे वक्त में वोटरों के जो समूह होते हैं वो अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़कर नई पार्टियों से जुड़ जाते हैं या पार्टियों का एजेंडा ही बदल जाता है।
अच्छा, तो पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बदल जाता है।
बिल्कुल, एक तरह से राजनीतिक नक्शा दोबारा खींचा जाता है। इससे एक नए दौर की शुरुआत होती है। ये समझने से पता चलता है कि पार्टियां पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदलती हैं, विकसित होती हैं, लेवल पर ही नहीं है, राज्यों में, स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर भी पार्टियों की अपनी इकाइयां हैं और उनके पास भी काफी ताकत होती है।
अच्छा,
पार्टी अध्यक्ष हैं, कमेटियां हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है।
और इसमें भी कोई बदलाव आया है पुराने जमाने से?
हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुराने जमाने में खासकर बड़े शहरों में पार्टी मशीनें हुआ करती थीं।
पार्टी मशीनें, ये क्या होती थीं?
ये बहुत ताकतवर संगठन होते थे जो एक तरह से अपने इलाके की पूरी राजनीति को कंट्रोल करते थे। नौकरियां देना, मदद करना, वोट डलवाना, सब उनके हाथ में होता था।
अच्छा, मतलब उनका दबदबा होता था।
हाँ, पूरा। लेकिन आज की पार्टियां वैसी नहीं हैं। आज की पार्टियां ज्यादातर सेवा उन्मुख हैं।
सेवा उन्मुख?
हाँ, मतलब उनका मुख्य काम अब उम्मीदवारों को चुनाव जीतने में मदद करना है, उनके लिए पैसा जुटाना, विज्ञापन देना, सर्वे कराना, डेटा एनालिसिस करना, वगैरह वगैरह।
तो मतलब ताकत अब पार्टी संगठन से ज्यादा उम्मीदवार के हाथ में आ गई है?
काफी हद तक। उम्मीदवार अब अपनी टीम बनाते हैं, अपने सलाहकार रखते हैं, अपना एजेंडा सेट करते हैं, पार्टियों ने सपोर्ट करती है।
और वोटरों के बीच पार्टी की पकड़ कैसी है? क्या लोग अब भी पार्टियों से बहुत जुड़े हुए हैं?
हाँ, ये एक और मजेदार चीज है। पार्टी पहचान, यानी किसी पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस करना, आज भी अमेरिकन राजनीति में बहुत शक्तिशाली चीज है।
अच्छा, कैसे?
ये सिर्फ एक राजनीतिक पसंद नहीं रह जाती, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल पहचान बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है।
पहचान मतलब?
मतलब ये तय करती है कि लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, किस खबर पर यकीन करते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं। किताब ये भी बताती है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों से मोटे तौर पर कौन कौन से समूह जुड़े हैं, जैसे नस्ल, धर्म, आय, शिक्षा, इन सब के आधार पर वोटिंग पैटर्न क्या है।
और इसी से जुड़ी एक और बात आपने कही थी, नेगेटिव पार्टिसनशिप।
हाँ, नेगेटिव पार्टिसनशिप, ये आजकल बहुत बढ़ गया है।
ये क्या है असल में?
इसका मतलब है कि लोग अपनी पार्टी को शायद उतना पसंद नहीं करते जितना कि वो दूसरी पार्टी से नफरत करते हैं।
अरे, मतलब अपनी पार्टी के लिए प्यार कम, दूसरी पार्टी के लिए नफरत ज्यादा।
बिल्कुल, बहुत से लोग अपनी पार्टी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें विरोधी पार्टी बर्दाश्त ही नहीं होती, उससे सख्त चिढ़ है। ये भावना आज की राजनीति में काफी हावी दिखती है।
ये तो काफी चिंताजनक बात लगती है।
है तो, अब देखिए, चुनाव जीतने के बाद सरकार में भी पार्टियों की भूमिका अहम होती है।
हाँ, वो कैसे?
अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में कौन लीडर बनेगा, किस कमेटी में कौन बैठेगा, कौन से बिल आगे बढ़ेंगे, कौन से रुकेंगे, ये सब काफी हद तक पार्टी लाइन पर तय होता है।
अच्छा,
राष्ट्रपति भी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी संगठन का, पार्टी के सांसदों का इस्तेमाल करता है।
लेकिन क्या सांसद हमेशा पार्टी की ही सुनते हैं, अपने इलाके के वोटरों की नहीं?
यहीं पर एक खींचतान हमेशा बनी रहती है, पार्टी अनुशासन बनाम स्थानीय प्रतिनिधित्व। सांसद को अपनी पार्टी की लाइन भी देखनी है और अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की जरूरतें भी, इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है।
अब आते हैं चुनावी प्रक्रिया पर। ये प्राइमरी और कॉकस क्या चीज है? उम्मीदवार कैसे चुने जाते हैं?
देखिए, पहले क्या होता था कि पार्टी के जो बड़े नेता होते थे वो बंद कमरों में बैठकर तय कर लेते थे कि कौन चुनाव लड़ेगा।
अच्छा, मतलब स्मोक फील्ड रूम्स।
हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है, अब ज्यादातर राज्यों में प्राइमरीज या कॉकसेस होते हैं।
ये क्या हैं?
ये एक तरह के आंतरिक चुनाव होते हैं जहां पार्टी के आम सदस्य या रजिस्टर्ड वोटर वोट डालकर तय करते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति या दूसरे पदों के लिए कौन उम्मीदवार होगा।
तो इससे ताकत आम कार्यकर्ताओं के हाथ में ज्यादा आ गई।
हाँ, कह सकते हैं इसने इस सिस्टम को ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं।
जैसे?
और ये आयोवा और न्यू हैम्पशायर का क्या चक्कर है? ये हमेशा खबरों में रहते हैं।
हाँ, क्योंकि ये वो राज्य हैं जो सबसे पहले अपने प्राइमरी या कॉकस करवाते हैं।
तो उससे क्या फर्क पड़ता है?
बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ जो उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करता है उसे शुरुआती बढ़त मिल जाती है, मीडिया का सारा ध्यान उस पर चला जाता है, चंदा मिलना आसान हो जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है।
अच्छा, तो ये शुरुआती राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फर्क है कि ये सिस्टम ऐसे उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाता है जो पैसा जुटाने में माहिर हों, मीडिया में अच्छे दिखते हों और जो पार्टी के सबसे कट्टर समर्थकों को लुभा सकें। जरूरी नहीं कि वो शासन करने में सबसे काबिल हों।
ये तो सोचने वाली बात है।
फिर आता है आम चुनाव का प्रचार, वो आजकल कैसा होता है?
आजकल के चुनाव प्रचार तो बहुत हाईटेक हो गए हैं।
हाईटेक मतलब?
मतलब सही मैसेज तैयार करना, किस वोटर ग्रुप को टारगेट करना है ये तय करना, लगातार ओपिनियन पोल कराना, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना, टीवी पर नेगेटिव एड देना, ये सब इसके हिस्से हैं।
और यहाँ भी वही बात आती है, उम्मीदवार केंद्रित अभियान, कैंडिडेट सेंटर्ड कैंपेन्स।
हाँ बिल्कुल, चुनाव की जो रणनीति है, जो मैसेजिंग है, वो अब पार्टी का केंद्रीय दफ्तर कम तय करता है, उम्मीदवार और उसके अपने सलाहकार ज्यादा तय करते हैं। उम्मीदवार का व्यक्तित्व, उसकी कहानी, ये सब बहुत अहम हो गया है।
और अब वो मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, पैसा।
हाँ, पैसा, मनी इन पॉलिटिक्स, ये हमेशा से ही एक बड़ा और विवादित मुद्दा रहा है अमेरिका में।
क्यों, इतना विवाद क्यों है इस पर?
क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसे के दम पर अमीर लोग और बड़े कॉरपोरेशंस राजनीति को कंट्रोल कर सकते हैं और आम आदमी की आवाज दब जाती है।
तो क्या इसे रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं है?
हैं और बनते रहे। मेजल बताते हैं कि कैसे समय समय पर पैसे के असर को कम करने के लिए कानून बने, जैसे FECA, फेडरल इलेक्शन कैंपेन एक्ट, या BCRA, बाईपार्टिसन कैंपेन रिफॉर्म एक्ट, जिसे मिकैन फाइन गोल्ड एक्ट भी कहते हैं।
अच्छा, ये कानून क्या करते थे?
ये कोशिश करते थे कि उम्मीदवारों को सीधे तौर पर कितना चंदा मिल सकता है, जिसे हार्ड मनी कहते हैं, और पार्टियों या बाहरी ग्रुप्स को कितना मिल सकता है सॉफ्ट मनी, इस पर कुछ सीमाएं लगाई जाएं, पारदर्शिता बढ़ाई जाए।
तो क्या ये सफल रहे?
कुछ हद तक, लेकिन फिर आया सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला, सिटीजंस यूनाइटेड VFEC।
हाँ, ये मैंने सुना है, इसने क्या बदला?
इसने, आप कह सकते हैं, पूरा खेल ही बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि कंपनियां और यूनियनें भी बोलने की आज़ादी रखती हैं और इसलिए वो चुनावों पर जितना चाहें उतना पैसा खर्च कर सकती हैं, जब तक वो सीधे उम्मीदवार के कैंपेन के साथ कोऑर्डिनेट न करें।
मतलब वो उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में विज्ञापन दे सकती हैं।
हाँ, और वो भी बिना किसी सीमा के। यहीं से सुपर पैक्स का जन्म हुआ।
सुपर पैक्स, ये क्या है?
ये ऐसे पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज हैं जो किसी उम्मीदवार से सीधे तौर पर जुड़े नहीं होते, लेकिन उसके समर्थन में या उसके विरोधी के खिलाफ असीमित मात्रा में पैसा खर्च कर सकते हैं।
अरे बाप रे, तो इससे तो पैसे का प्रभाव और बढ़ गया होगा।
बहुत ज्यादा। इसने अमेरिकी चुनावों में पैसे की भूमिका को और भी जटिल और कह सकते हैं अपारदर्शी बना दिया है। मेजल की वो बात याद आती है।
कौन सी?
वो कहते हैं राजनीति में पैसा पानी की तरह है, ये हमेशा दरारें ढूंढ लेता है।
वाह, क्या बात कही है, मतलब इसे रोकना बहुत मुश्किल है।
हाँ, नियम बनते हैं लेकिन पैसे वाले रास्ते निकाल ही लेते हैं।
किताब के आखिर में मेजल आज की बड़ी चुनौतियों पर बात करते हैं। एक तो वोटरों का व्यवहार, लोग वोट क्यों और कैसे देते हैं।
हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्या लोग मुद्दों को देखकर वोट देते हैं या सिर्फ अपनी पार्टी के नाम पर या उम्मीदवार को देखकर?
क्या लगता है?
सच तो ये है कि ये मिला जुला मामला है, लेकिन पार्टी पहचान, जैसा हमने पहले कहा, अक्सर एक अवधारणात्मक स्क्रीन की तरह काम करती है।
अवधारणात्मक स्क्रीन मतलब?
मतलब लोग जानकारी को, खबरों को अपनी पार्टी के नजरिए से ही फिल्टर करके देखते हैं। जो बात उनकी पार्टी लाइन से मेल खाती है उसे मान लेते हैं, जो नहीं खाती उसे खारिज कर देते हैं।
अच्छा, तो इससे विरोधी पक्ष की बात समझना या मानना और मुश्किल हो जाता होगा।
बिल्कुल, आप एक ही घटना को दो अलग अलग पार्टियों के समर्थक बिल्कुल अलग तरीके से देख सकते हैं।
और अमेरिका में ये दो ही पार्टियों का दबदबा क्यों है, तीसरी पार्टी क्यों नहीं सफल हो पाती?
इसका मुख्य कारण है अमेरिका का चुनावी सिस्टम। वहां ज्यादातर चुनाव विनर टेक ऑल सिस्टम पर होते हैं।
विनर टेक ऑल मतलब?
मतलब जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, चाहे वो सिर्फ एक वोट से ही क्यों ना जीता हो, वही जीतता है। बाकी पार्टियों को कुछ नहीं मिलता।
अच्छा, तो इससे छोटी पार्टियों के लिए सीट जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
हाँ, उनके वोट बेकार चले जाते हैं, इसलिए वोटरों को भी लगता है कि छोटी पार्टी को वोट देने से क्या फायदा, वो जीतेगी तो है नहीं, इससे बेहतर है कि दो बड़ी पार्टियों में से किसी एक को चुने।
लेकिन क्या ये छोटी पार्टियां फिर कोई भूमिका निभाती हैं?
हाँ, थोड़ी बहुत निभाती हैं। कभी कभी वो किसी चुनाव में बड़ी पार्टियों के वोट काट सकती हैं और नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। उन्हें स्पॉयलर कहा जाता है।
अच्छा।
या फिर वो नए मुद्दे उठा सकती हैं जिन पर बड़ी पार्टियां ध्यान नहीं दे रही होती। बाद में हो सकता है कि कोई बड़ी पार्टी उन मुद्दों को अपना ले, तो एक तरह से वो इनोवेटर का काम भी करती हैं।
और आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है अमेरिकी राजनीति में मेज़ेल के अनुसार?
वो है अति पक्षपात और वैचारिक ध्रुवीकरण,
हाइपर पार्टिसनशिप एंड पोलराइजेशन।
ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है।
इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, न सिर्फ एक दूसरे से वैचारिक रूप से बहुत दूर हो गई हैं,
हाँ,
बल्कि अपनी अपनी पार्टी के अंदर भी वो ज्यादा एक जैसे, मतलब ज्यादा कट्टर हो गई हैं। उदारवादी रिपब्लिकन या रूढ़ीवादी डेमोक्रेट अब लगभग खत्म हो गए हैं।
तो बीच की जमीन खत्म हो गई है।
हाँ बिल्कुल, उनके बीच कोई कॉमन ग्राउंड, कोई साझा जमीन बची ही नहीं है। वो एक दूसरे को सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन की तरह देखने लगे हैं।
इसके सबूत क्या है?
सबूत हर तरफ हैं। संसद में गतिरोध, यानी जरूरी कानूनों का पास न हो पाना, जनता का सरकार और राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा कम होना।
हाँ, ये तो है।
और राजनीतिक बहस का स्तर देखिए, कितना कड़वा, कितना व्यक्तिगत और दुश्मन जैसा हो गया है। मेज़ेल तो यहां तक कहते हैं कि हालत ये हो गई है कि पार्टियां अब इस बात पर भी सहमत नहीं हो पाती कि असलियत क्या है, फैक्ट्स क्या है।
बाप रे, जब सच पे ही सहमति ना हो तो फिर
लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये वाकई एक खतरनाक स्थिति है। किताब कुछ सुधारों की भी चर्चा करती है।
जैसे?
जैसे चुनावी चंदे के कानूनों में बदलाव लाना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन निष्पक्ष तरीके से करना, जिसे गेरीमैंडरिंग कहते हैं उसे खत्म करना, या प्राइमरी सिस्टम में बदलाव लाना ताकि ज्यादा उदारवादी उम्मीदवार भी जीत सकें।
तो इस पूरी बातचीत से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे हिसाब से पांच बड़ी बातें हैं जो इस किताब से निकल कर आती हैं।
बताइए।
पहला, पार्टियां जरूरी हैं। लोग चाहे उन्हें पसंद करें या ना करें, अमेरिकी लोकतंत्र उनके बिना नहीं चल सकता। उनके काम अनिवार्य हैं।
ठीक है। दूसरा?
दूसरा, उम्मीदवार अब ज्यादा हावी हैं। ताकत पार्टी संगठन से हटकर उम्मीदवार और उसके कैंपेन की तरफ ज्यादा आ गई है। कैंडिडेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स।
तीसरा,
पार्टियां बदलती रहती हैं, वो स्थिर नहीं है। इतिहास की बड़ी घटनाओं जैसे पुनर्संग्रेखण के साथ उनका रूप, उनका आधार बदलता है, वो अडाप्ट करती हैं।
चौथा,
पैसे का बड़ा खेल। पैसा अमेरिकी चुनावों पर गहरा असर डालता है और सिटीजंस यूनाइटेड जैसे फैसलों ने इसे और भी जटिल और शायद ज्यादा प्रभावशाली बना दिया है।
और पांचवा,
ध्रुवीकरण एक बड़ा खतरा है। आज पार्टियों के बीच जो गहरी वैचारिक खाई है, जो दुश्मनी है, वो अमेरिकी राजनीति की स्थिरता और कामकाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।
इनमें से ये जो ध्रुवीकरण वाली बात है, इस पे थोड़ा और सोचना चाहिए मुझे लगता है।
हाँ बिल्कुल।
जब समाज इतना ज्यादा बट जाए कि लोग बुनियादी तथ्यों पर, मतलब असलियत क्या है, इस पर भी सहमत न हो पाए,
हाँ,
तो फिर किसी भी समस्या का हल कैसे निकलेगा, बातचीत कैसे होगी?
सही बात है। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं रह जाता, ये समाज के ताने बाने को, आपसी भरोसे को तोड़ने लगता है।
और ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, है ना? दुनिया के कई और लोकतंत्रों में भी ऐसी दरारें दिख रही हैं।
बिल्कुल दिख रही हैं। भारत में भी हम कभी कभी राजनीतिक बहस में ऐसी कड़वाहट देखते हैं जहां लोग एक दूसरे की बात सुनने को ही तैयार नहीं होते। लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हों।
किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो शायद दिमाग में रह जाती हैं, कुछ कोट्स।
हाँ, मेज़ेल के लिखने की शैली ऐसी है कि कुछ बातें सीधे असर करती हैं। जैसे वो लिखते हैं, अमरीकी हमेशा राजनीतिक दलों पर संदेह करते रहे हैं, फिर भी लोकतंत्र उनके बिना काम नहीं कर पाया है।
हाँ, ये एक तरह का विरोधाभास है, पार्टियों को नापसंद करना पर उनके बिना काम भी ना चलना।
बिल्कुल, ये उनकी जरूरत को रेखांकित करता है, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें।
एक और जरूरी बात उन्होंने कही, आधुनिक चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पार्टी नीत अभियानों से उम्मीदवार नीत अभियानों की ओर है।
हाँ, ये उस शक्ति के बदलते संतुलन को पकड़ता है जिसकी हमने बात की। पार्टी संगठन से ज्यादा अब उम्मीदवार और उसका कैंपेन केंद्र में है। इसके अपने फायदे नुकसान हैं।
और पैसे पर वो टिप्पणी तो कमाल की थी, राजनीति में पैसा पानी की तरह है, यह हमेशा दरारें ढूंढ लेता है
ना, ये बताता है कि पैसे के प्रभाव को काबू करना कितना मुश्किल है। नियम बनते हैं पर लोग, खासकर जिनके पास पैसा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। सुपर पैक्सिस का ताजा उदाहरण है।
और शायद सबसे चिंताजनक बात यह है, हम ऐसी राजनीति की ओर बढ़ गए हैं जहां पार्टियां वास्तविकता की प्रकृति पर ही असहमत हैं।
हाँ, ये आज के ध्रुवीकरण की गहराई और उसके खतरे को दिखाता है। जब बुनियादी सच पर ही सहमति ना हो तो फिर आगे बातचीत कैसे होगी? ये तो लोकतंत्र के मूल विचार पर ही सवाल उठा देता है।
तो सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान, एक आम नागरिक इस सारी जानकारी का क्या करे, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करे।
देखिए, पहली चीज तो ये कि हम जो भी राजनीतिक खबरें पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं,
हाँ
उन्हें थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखें।
जी,
ये समझने की कोशिश करें कि किस खबर में किस पार्टी का झुकाव दिख रहा है, जिसे स्पिन कहते हैं।
कहाँ पैसे का असर हो सकता है,
कौन सी बात तथ्य है और कौन सी सिर्फ राय,
मतलब मीडिया लिटरेसी।
हाँ बिल्कुल, मीडिया को लेकर ज्यादा जागरूक होना। दूसरा, जब हम वोट डालने जाएं तो ज्यादा जानकारी के साथ फैसला करें।
कैसे?
सिर्फ पार्टी का नाम या उम्मीदवार का चेहरा देखकर नहीं, बल्कि ये समझकर कि उनकी पार्टी असल में क्या सोचती है, उसके पीछे की विचारधारा क्या है, प्राइमरी चुनावों में क्या हुआ था, उम्मीदवार का अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
और ये भी समझना कि अगर संसद में काम नहीं हो रहा है तो इसकी वजह सिर्फ नेताओं की नाकामी नहीं है।
सही कहा, बल्कि इसकी वजह सिस्टम की बनावट, चुनावी नियम और ये गहरा ध्रुवीकरण भी हो सकता है। सिस्टम को समझना जरूरी है।
और जब राजनीतिक सुधारों की बात हो, जैसे चुनाव सुधार या कैंपेन फाइनेंस सुधार,
तो हम बेहतर तरीके से समझ सकें कि कौन सा सुधार क्या असर डाल सकता है। क्या किसी बदलाव से वाकई में चीजें बेहतर होंगी या उसके कुछ अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं, मतलब एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकें।
व्यवहारिक तौर पर क्या लोग कुछ कर सकते हैं?
हाँ, जैसे लोग अपने इलाके में जो स्थानीय पार्टी की गतिविधियां होती हैं उनको समझ सकते हैं, चाहे तो उनमें हिस्सा भी ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जानकारी होने से ना राजनीति उतनी डरावनी नहीं लगती।
हाँ ये तो है,
लगता है कि शायद हम भी कुछ भूमिका निभा सकते हैं, चाहे छोटी ही सही। ये किताब एक तरह से उस पूरी राजनीतिक दुनिया का नक्शा देती है जिसे देखकर रास्ता खोजना थोड़ा आसान हो सकता है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये रही है कि अमेरिकी राजनीतिक पार्टियां कितनी लचीली, मतलब रेजिलिएंट साबित हुई हैं।
अच्छा, कैसे?
मतलब 200 साल से ज्यादा हो गए, कितनी चुनौतियां आईं, कितने बदलाव आए, लेकिन वो किसी न किसी रूप में टिकी हुई हैं। उन्होंने खुद को बदला है, माहौल के हिसाब से ढाला है। ये दिखाता है कि संस्थाएं कैसे जिंदा रहती हैं और बदलती हैं।
हाँ, ये दिलचस्प पहलू है। और मेरे लिए सबसे अहम बात शायद ये है कि चुनावी नियम कितने ज्यादा मायने रखते हैं।
चुनावी नियम?
हाँ, छोटे छोटे नियम जैसे वोट कैसे डाले जाते हैं, प्राइमरी कैसे होती है, चंदे का हिसाब कैसे रखा जाता है, ये बड़े नतीजे तय कर सकते हैं। ये अक्सर अनदेखे रह जाते हैं पर इनका असर बहुत गहरा होता है। और दूसरी बात, वो ध्रुवीकरण वाली चुनौती, वो वाकई कितनी गंभीर है। ये सिर्फ सामान्य राजनीतिक खींचतान नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक खतरा है जिस पर गंभीरता से सोचने और काम करने की जरूरत है।
तो आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ जरूर,
सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।